مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دنیا میں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، پہلے وہ جنہیں وفادار دوست ملتے ہیں اور دوسرے وہ جنہیں ماں کی دعائیں ملتی ہیں۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح خیر۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام پیارے اور عزیز ناظرین بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اپنی خوبصورت سی صبح کا آغاز ایک پیاری سی خوبصورت سی مسکراہٹ اور آپ کی اور ہمارے اپنے پروگرام صبح زندگی کے ساتھ کر چکے ہوں گے۔ جی ہو رہے ہیں 6:35 اور ہم موجود ہیں تہران اسٹوڈیو میں، اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں۔ جی ناظرین، ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے کنات کے بارے میں۔ کل ہم نے نفسیاتی پہلو سے اس بارے میں بات کی، آج تو خیر ہمارا جمعرات کا دن اور کھانے پینے کا دن ہے، پر میں اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس پورے ہفتے جو ہم نے بات کی کنات کے بارے میں، ہمیں کیا سبق ملا۔ ہم نے ہر پہلو سے بات کی، اب چاہے وہ عبادت کی کنات ہو یا وہ زندگی کے مالی حصے پہ یا کسی اور طریقے سے، ہم نے ہر پہلو پہ بات کی اور ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جی ہاں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر حصے میں کنات بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک تو ہمیں اسراف سے بچاتا ہے، اب وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو یا مالی لحاظ سے ہو، دوسرا ہمیں ایک ایسا انسان بناتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ جب ہم کنات کرتے ہیں اور اپنا جو اپنے پاؤں ہیں وہ اپنی چادر تک ہی پھیلاتے ہیں، تو کافی ایسی چیزیں جو ہیں جو اسلام میں بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا کھانے پینے کا دن ہے، ہم کل موضوع کا اعلان کر چکے ہیں۔ جی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس متعلق، کنات کے متعلق، آج کے موضوع کے متعلق، ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم آن لائن موجود ہیں، ایک کلک کی دوری پہ ہیں۔ جی ہاں، آپ کمنٹ کیجیے، ہمیں بتائیے یا پروگرام کے دوران ہمیں کال کیجیے۔ کیسے کال کریں اور کیسے ہمیں ای میل کریں، آئیے تمام رسے دیکھتے ہیں اس وقفے میں۔ جی ناظرین، خوش آمدید۔ آپ نے وہ تمام رستے دیکھ لیے کہ آپ کس طرح ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں پروگرام کے دوران، پروگرام کے بعد۔ ہمیں بہت بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں کال کریں، کمنٹس کریں، یا پروگرام کے بعد آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے یا کچھ پسند نہیں آ رہا، یا آپ چاہتے ہیں ہم کچھ اس پروگرام میں اضافہ کریں، ہمیں ضرور 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 بتائیے گا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عثمان خالق صاحب، کھانے پینے کی مزیدار باتیں کریں گے۔ کل ہم موضوع بتا چکے تھے، جی ہاں، دہی کی اہمیت، اس کے فوائد، دہی کیوں کھانی چاہیے، کیوں نہیں کھانی چاہیے۔ ویسے تو کھانی، مجھے خود کو بھی دہی بہت پسند ہے، پر ہم اس بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کی نظر سے، کس طرح ہمیں دہی کے بارے میں، یعنی ان کے فوائد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے۔ جی ناظرین، ویسے میں بھی آج کچھ دلچسپ اور خاص خبریں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، بڑی دلچسپ، گاجر کے بارے میں۔ مجھے کل خود پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں۔ جی ناظرین، ساتھ مل کے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں ہندوستان اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اگر سین کی باولی میں ہیں، نیچے گئے تھے، دیکھا اس کو کس طرح کے پتھر کا استعمال ہوا، پانی کہاں تک آتا تھا، پانی کے جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی اگر نیچے ہوتا تھا تو اس کو کس طریقے سے جو ہے اوپر لے جاتے تھے۔ ایک تو یہ سیڑھیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پہ بیچ میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، جیسا میں نیچے دکھاؤں گا آپ کو کہ نیچے سے جو ہے یہ سیڑھیاں اس طریقے سے جو ہے اوپر ہیں۔ اور اب میں آپ کو، کیمرہ مین کو میں بولوں گا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آئے، تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سیڑھیاں کہاں جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیے، روشنی کے لیے یہ جگہ ہے، آپ یہاں بیٹھیے آرام سے، اس طریقے سے آپ اس کو انجوائے کیجیے، کتابیں پڑھیے، لکھیے۔ جو رائٹر ہیں، جو اسکالرس ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، جن کو مطلب کتابیں لکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ ایسی ہی جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو ایسی جگہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو جہاں پہ وہ اچھی طریقے سے لکھیں۔ چلیے فی الحال ہم اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سیڑھیاں ہمیں کہاں تک لے کے جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے، اندھیرے سے نکل کے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اجالے میں، اوپر کی طرف آ گئے ہیں۔ پانی اگر یہاں تک ہوگا تو یہاں سے آرام سے اسے جو ہے انجوائے کیا جا سکے گا۔ کیا ہوتا تھا کہ اس گرمیوں میں جو گرم ہوائیں ہوتی تھیں، جو اوپر سے نیچے آتی تھیں، پھر اس کے بعد جب وہ واپس جاتی تھی، وہ ٹھنڈی हवाओं में तब्दील हो जाती हैं। तो बावली का एक और ये यूज़ भी है। चलिए फिलहाल हम लोग बाहर चलते हैं, ऐसा ना हो कि बावली में ही हम लोग खो जाएं। चलिए। जिस तरीके से आम जिंदगी की ज़रूरत के लिए बावली थी जो पानी की ज़रूरत पूरी करती थी, उसी तरीके से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए जो है यहाँ पे एक मस्जिद की भी तामीर किया गया था। मस्जिद छोटी थी बट मस्जिद यहाँ पे थी। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वो टूट फूट गई है बट मस्जिद बहरहाल अभी तक मौजूद है, जिसका निशान अभी तक मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ये छोटी सी मस्जिद कभी उसी ज़माने में सिर्फ 15वीं या 16वीं सदी में इसको बनाया गया था। देख सकते हैं इसमें अरबिक में लिखा हुआ है, अरबिक कैलीग्राफी। ये कभी उस तरीके पीछे भी थी मस्जिद, मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे भी कभी थी, थोड़ी सी बड़ी थी। अभी फ़िलहाल ये टूट गई है। चलिए अंदर आते हैं और इसको देखते हैं। मस्जिद का एक ये वाला हिस्सा अभी तक मौजूद है, नमाज नहीं होती क्योंकि ये भी पूरी तरीके से टूट चुकी है, नमाज यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये हिस्सा है अभी उसके, जबकि ये वाला जो हिस्सा है कभी थोड़ी बड़ी रही होगी तो ये वाला हिस्सा देखिए टूट गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये किसी ने तोड़ा नहीं है, ये अपने आप ही टूटा है इस तरीके से। तो ये चीज़ जो है प्रूव करती है कि किसी ज़माने में, खैर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कि हिंदुस्तान में खासकर दिल्ली में मुसलमानों का दबदबा था और उनकी बनाई हुई इमारतें आज भी जो हैं गवाह हैं, शाहिद हैं कि कभी यहाँ से जो है बादशाह और सुल्तान जो है अपना चलाए सल्तनत को चलाया करते थे। फिलहाल जो मैं अभी यहाँ पे बावली में था, जो कनॉट प्लेस जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहाँ था। मैंने आपको एक पुरानी एक स्टेपवेल बावली से जो है रूबरू कराया। फ़िलहाल के लिए आसिफ खान मैं हूँ, जिसे इजाज़त दीजिए आप। मैं आपको अगली बार फिर किसी और मकाम पर मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा।
जी नाजिन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आपने आसिफ के साथ हिंदुस्तान की सैर की, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जी नाजिन, अभी कुछ ही लम्हात पहले अहमद लाहौरी साहब ने और यूनुस अरकानी साहब ने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया है और फरद बंदी साहबा ने हमारे को कमेंट किया है कि उनको मेरा, खुरम भाई का और हसन भाई का काम बहुत पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए, हमें बहुत बहुत खुशी होगी। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम,
कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए डॉक्टर साहब। खाने पीने का दिन, मज़ेदार बातों का दिन होता है आपके साथ, तो बड़ा मज़े मज़े की बातें होती रहती हैं। आज का मौजू हमारा है दही के बारे में है और दही के फ़वाद, उसकी अहमियत। सबसे पहला तो ये है कि मैं एक, यहाँ ईरान में एक ट्रेंड है, खाने के साथ दही ज़रूर खाते हैं, तो दुरुस्त है या नहीं? दही को अलहदा लेना चाहिए या खाने के साथ लेना चाहिए, क्या है?
ये सारी चीज़ें मैं अपने जहन में लेकर आया हूँ।
अच्छा,
बाकी आपने जहाँ तक बात की मज़े मज़े का कम होता है, ड्रोना ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर डराता ही रहता हूँ। लेकिन यह है कि जो चीज़ें अब सामने हैं वो सामने हैं, उनकर तो
नहीं, अच्छी बात है ना। जैसा हमारे नाज़रीन को या मुझे खुद को कितनी चीज़ों के बारे में नहीं पता था जो आपने बताया, और बाद में हमारी आंखें खुल जाती है, अरे ऐसा भी है, तो ये तो अच्छी बात है।
असल में मसला यही है कि जितनी चीज़ें मैं यहाँ अगर बताता हूँ वो आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे यहाँ तक के तरक्की पजीर ममालिक में भी, तरक्की याफ्ता तो बहुत दूर की बात होगी, तरक्की पजीर ममालिक में भी अगर उन चीज़ों के ऊपर अमल करना कोई बंदा चाहे भी, तो उसके लिए एक ही हल है कि या तो वो गांव में भी नहीं, जंगलों में जाकर जो है वो रहना शुरू कर दे, तब उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर कुदरती चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप खाने पीने के मामले में यहाँ तक कि गांव में भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको 70-80% चीज़ें जो
अब तो वहाँ ही खासा मिलावट शुरू हो गई,
बिल्कुल वो मस्नूई ही मिलती हैं।
अच्छा जी,
दही के मुतल्लिक دہی کے متعلق شروع کرنے سے پہلے تھوڑی اس کی ہسٹری میں میں جاؤں گا.
پس منظر دیکھتے ہیں دہی
جی
کا کیا ہے.
بالکل,
چلو.
دہی کافی پرانی غذا ہے
اچھا
اور اس کی جو ایگزیکٹ جس کو کہتے ہیں اوریجن, اس کے متعلق علم نہیں ہے, لیکن عام خیال یہی ہے کہ یہ مڈل ایسٹ یا سینٹرل ایشیا
سے
کی
شروع.
ایجاد. اور شروعات میں آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ کے زیادہ تر علاقے جو ہے وہ چونکہ صحرائی علاقے ہیں, یہاں پر گائے وغیرہ جو ہے وہ اتنی عام پائی نہیں جاتی تھیں. تو دوسرے جانور جو کہ سدھانے میں بھی آسان تھے اور جو رکھے بھی جاتے تھے, مثال کے طور پر بکری ہو گئی, اور بکریاں زیادہ تر جو ہے وہ رکھی جاتی تھی.
جی
اس کے علاوہ اونٹ, مجھے
اچھا
یاد ہے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا کہ اونٹ کے دودھ کی دہی نہیں بنتی, اس پر میں نے کافی تحقیق کی ہے اور یہ ہے کہ
بنتی ہے.
دہی بنتا ہے اس کا.
اچھا
جی بالکل, مختلف ہوتا ہے تھوڑا, لیکن دہی بنتا ضرور ہے اس کا. اور جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے, وہاں پر تو زیادہ جو ہے وہ اسی کا دہی استعمال کیا جاتا تھا. اب تو خیر وہ سارے ماڈرنائز ہو گئے, سب کچھ ڈیری آ گیا, ڈیری پروڈکٹس آ گئی ہیں. تو یہ اوریجن وہاں کی ہے. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جانور جو ہے وہ بہت انسانی تہذیب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں کافی پہلے سے دھا لیے گئے تھے, کیونکہ بڑے حلیم قسم کے جو ہے وہ جانور ہیں. لیکن گائے کو سدھانا, گائے اب حلیم ہے,
اچھا
لیکن پہلے یہ کافی جو ہے وہ جنگلی قسم کی ہوا کرتی تھی. آج
اچھا
بھی آپ کا جنگلی گایوں یا بھینسوں سے تعلق
بالکل.
پڑے تو وہ واقعی میں جنگلی ہوتے ہیں. اور تو یہ دوسری وجہ تھی. اچھا دہی کی طرف آتے ہیں. دہی جب بھی ہمارے ذہن میں دہی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بس یہی ایک تصور ابھرتا ہے کہ دہی جو ہے وہ جانوروں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. اصل میں پودوں سے بھی دہی جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. مثال کے
اچھا
طور پر جیسا میں نے سویا ملک کا ذکر کیا تھا, اس
بالکل.
کے فوائد کا بھی, سویا ملک سے بھی دہی بنایا جاتا ہے
اچھا
اور اس کے علاوہ کوکونٹ سے بھی جو ہے وہ دہی بنایا
اچھا
جاتا ہے.
یہ سنا ہے ناریل کا دودھ یا اس
جی
طرح کی
بالکل
بات سنی ہے. بالکل
جی.
ٹھیک ہے.
اور بعض جگہوں سے مجھے زیادہ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے, لیکن بعض جگہوں سے میں نے پڑھا تھا کہ اس کا بادام کا دودھ بھی بنایا جاتا ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ دہی
دہی
بنایا
نکلتا
جاتا
ہے.
ہے, لیکن
اچھا
وہ بہت کوئی عام چیز نہیں ہے.
اچھا
عام جو ہے وہ زیادہ تر ڈیری ہی آتا ہے. تو
صحیح.
جو چیز جانوروں کے دودھ سے بنائی جائے وہ جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس, ڈیری یوگرٹ یا ڈیری جو ہے دہی
جی
کہلاتا ہے. اور جو دوسرے پلانٹ بیسڈ ڈائٹ سے جو ہے وہ بنایا جائے, جیسے سویا ملک ہو گیا, کوکونٹ ہو گیا, وہ جو ہے وہ نان ڈیری کہلاتا ہے.
صحیح.
اب اس کے اندر اس کو ہم دو پارٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. دہی کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دہی کیسا ہے, کتنی دیر جمع رہا, کیسے جمایا گیا, کون کہاں سے حاصل کیا گیا, کتنی دیر جو ہے وہ آپ نے فریزر میں رکھے رکھا. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی خوراک کیا تھی.
اچھا
آج کل عمومی طور پر جو ہے وہ گائے کے دودھ سے جو ہے وہ دہی
دہی
بنایا
بنتی
جاتا ہے,
ہے.
تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ گائے کی جو ہے وہ خوراک کیا ہے جس سے آپ دہی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. عام طور پر آج کل جو آپ کو معلوم ہے کہ فیکٹریز ہیں, بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں,
جی
وہ جو ہے جانوروں کو ایک ہی جگہ پر بند رکھتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ خوراک انہوں نے بالکل قدرتی سے ہٹا کر بدل دی ہے.
ٹھیک.
عام طور پر یہ جانور جو ہے وہ سبزہ یا گھاس وغیرہ کھایا کرتے تھے, لیکن آج کل جو ہے وہ ان کو کھل ڈالا جاتا ہے. اس
اچھا
کے علاوہ
انجیکشنز وغیرہ,
انجیکشنز دیے
فارمیلک
جاتے
وغیرہ دیے
ہیں,
جاتے
اس
ہیں.
کے علاوہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں, موڈ ڈپریسرز ڈالے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ, مطلب کہ وہ ایک الگ ہی کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ دہی کا اپنے اصل جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا ہو تو وہ آپ کو بنیادی طور پر جو قدرتی چیز ہے اسی سے حاصل ہوگا. میں ان
اچھا
دونوں کے درمیان جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں.
بالکل.
جو اصل دہی ہے اس میں آپ, جیسا کہ میں نے دودھ میں بتایا مکمل غذا ہے, دہی بھی مکمل غذا ہے, لیکن اس کے دودھ سے بھی زیادہ فوائد ہیں.
اچھا
وجوہات اس کی یہ ہیں, بہت ساری ہیں, تھوڑی بہت میں لسٹ کروں گا.
صحیح.
مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے ایک بیماری کا ذکر کیا تھا, لیکٹوز انٹولرنس. بعض لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ دودھ میں موجود جو نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں ان کو
جی
ہضم نہیں کر پاتے.
اچھا
ان لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ دہی کے استعمال سے جو ہے وہ اس چیز کو ہضم کر
کر
لیتی ہے.
لیتے ہیں. ٹھیک.
دہی کی اجزاء کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر جس طرح دودھ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کاربوہائیڈریٹس,
صحیح
پروٹینز, فیٹس, और कुछ विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स भी मौजूद हैं, उसी तरह इसमें भी वो तमाम चीज़ें मौजूद
मौजूद
हैं।
है। ठीक,
कैल्शियम भी मौजूद है जो कि
अच्छा,
आपको दूध से मिलता है, दूध से मिलती है, सॉरी, वो
सही,
दही मुजक्कर मोनस का जो है वो बीच
मिक्स हो
में डिफरेंस आ जाता
गया
है। जी
था।
बिल्कुल, तो दूध से मिलती है। इसके अलावा अब कुछ विटामिन्स हैं, विटामिन B5 हो गया, B12 हो गया। इसके अलावा आयोडीन की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो दही
दही
से
में
आपको
होती
मिलती है।
है,
अब
अच्छा
बहुत सारी ऐसी गुजाएँ हैं जिसमें आयोडीन जो है वो नहीं मौजूद होती,
ठीक,
और आयोडीन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी वजह है मेंटल IQ कम होने की।
बिल्कुल,
बहुत सारे ममालिक में जो है वो इस वजह से जो है वो मेंटल IQ कम होता है, और आपका जो एक मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का नॉर्मल,
सही
वो
है
आयोडीन डिपेंडेंट होता है।
जी,
इसके अलावा फास्फोरस जो है वो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको फास्फोरस चूँकि अमूमी तौर पर गोश्त वगैरह से मिलता है,
सही,
उस सूरत में, वेजिटेरियन होने की सूरत में आपको जो है वो इधर से फास्फोरस जो है वो काफ़ी मिकदार में नहीं मिलता, लेकिन दही के अंदर जो है वो फास्फोरस की
आपको
काफ़ी जो
मिलता
है
है
वो मिकदार मौजूद होती है,
जी
फॉस्फेट्स की सूरत में अमूमी तौर पर पाया जाता है।
जी डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो बहुत शुक्रिया। इसके फ़वाद के बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी
जी
रखेंगे। हमें लेना एक खूबसूरत सा वक्त और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा मत जी। नाजन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अहमद लाहौरी साहब ने हमारे को अभी 5 मिनट पहले फिर से मैसेज भेजा है जी, कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊदीया में हूँ, आपका प्रोग्राम हर रोज़ देखता हूँ। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत से मुफीद मशवरे मिलते हैं, और प्रोग्राम की सारी टीम को और सिस्टर रुबाब को मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको सलाम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास जी। डॉक्टर साहब, भाई के बारे में बात हो रही थी, फ़वाद आपने तो बता दिया कि इसमें विटामिन्स है, फॉस्फोरस है, कितनी
जी
सारी चीज़ों से सरशार है ये दही। इंसानी जिस्म पे कितना कितने फ़ायदे, इसके गहरे फ़ायदे नहीं हो सकते इसके?
फवायद की तरफ मैं तफसीलन आता हूँ थोड़ा वक्फे के बाद। मैं ज़रा पहले फ़र्क कर दूँ
अच्छा,
कि जो आपको कंपनी से जो बनी हुई दूध
बिल्कुल,
दही आती है, और जो आम तौर पर, मतलब कि अगर आपके पास सोर्सेज हैं, अपना जानवर
कुदरती जो मिल
मौजूद
रहा है
है,
आपको जी।
आप उसको कुदरती ग़िज़ा पर या घास वगैरह पर जो है वो पाल रहे हैं, तो उसके क्या फ़वायद हैं?
अच्छा
प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं दोनों अकसाम की दही में, लेकिन एक स्पेशल किस्म के फैट्स हैं, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड इसको कहते हैं।
जी,
ये आपकी बॉडी में जो खुलिए होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग की ना सिर्फ हिफाजत करते हैं बस, बल्कि उनको इन्फ्लेमेशन से जो है वो बचाते हैं।
अच्छा,
वो तमाम जानवर जो कि असल घास के ऊपर या चरागाहों के अंदर पले होते हैं, उनके दूध के अंदर इन फैट्स की तादाद ज़्यादा होती है,
ठीक,
जिसकी वजह से, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका ये आपके सेल्स जो है वो ज़्यादा अरसे तक लाइव रहते हैं, जिससे आपकी सेल के अंदर जो टूट फूट होती है उसके होने के खदशात जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, अगर आप
अच्छा
दही का जो है वो, उस दही का जो है वो एक मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक,
दूसरी ये होती है कि सेल जो है उनकी डिवीजन, एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखें कि हमारी जो एज होती है, हमारी जो उम्र है, वो सेल की डिवीजन से डिटरमिन होती है।
अच्छा
हमारे सेल जितनी रैपिडली जो है वो डिवाइड करेंगे,
ठीक
वो जितनी ज़्यादा डिवीजन्स जो है वो जितने कम अरसे में करेंगे,
जी,
हमारी उतनी ही कम उम्र होती है,
अच्छा
और सेल जितना आराम से स्लोली जो है वो डिवाइड करते हैं, उतनी ही जो है वो उनकी डिविजन्स कम होती हैं, और उसी हिसाब से हमारी
उमर,
उम्र भी बढ़ती है।
ठीक,
और जो सेल जल्दी डिविजन के थ्रू जाते हैं, उनमें टूट फूट के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें DNA म्यूटेशंस वगैरह, और इवन के कैंसर चूँकि DNA म्यूटेशंस ही
जी
की वजह से पैदा होते हैं, वो भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इनमें आप के चूँकि डिविजन्स कम हो रही हैं,
सही है
तोड़ फोड़ के
जी,
चांसेस कम हैं, वैसे
सही,
भी आपका सेल जो है वो बड़ी खुश व खुरम किस्म की जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो
अच्छा
उसमें जो है वो इस किस्म की म्यूटेशंस या एरर्स होने के चांसेस, और इवन के कैंसर होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाते
अच्छा
हैं। मतलब कि
वाह,
ये एक ऐसी चीज़ है जिसके आपको फौरी फवायद भी जो है वो मिलते हैं, और
सही है,
बहुत लंबे अरसे के भी फवायद
यानी कुछ
मिलते हैं।
फवाद जो अभी दिखते हैं और कुछ फवाद जो आगे चल के हमारे को
बिल्कुल
दिखेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल,
ठीक
आप खास तौर पर ये देखें कि पुराने लोग, ज़माने में जो लोग थे,
जी,
अभी भी आपको जो है वो बाज़ कुछ मिल जाएंगे
बिल्कुल
जिनकी खुराक में जो है वो कसरत जो है वो दूध दही की थी,
बिल्कुल बिल्कुल
आप उनको देख लें और बस वो
मैं
फिर
आपकी बात में बताती चलूँ कि एक है जानने वाले यानी फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, मेरी हस्बैंड की दादी 120 ईयर्स उनकी उम्र रही है, और उनका काम यही था सिर्फ, उनके पास बकरियाँ थी, उसी का दूध उसी का दही, यानी रोटी तोड़ के वो दूध में डुबो के खाती थी, और माशाल्लाह 120 ईयर्स उन्होंने
जी
उम्र
बिल्कुल,
की
एक तो ये मुकम्मल गजा दादी ने जहाँ आपने तस्करा किया
ठोस
वहाँ
गजा लिए दादी ने।
वहाँ मेरी दादी भी माशाल्लाह से 103 साल की उम्र थी, अभी
ओके
2-3 साल पहले उनकी वफात हुई है।
लड़ाई मत करें जी,
लेकिन वो बात वही है कि वही गजाएं और
ठोस
वही
गजा
सब कुछ
खाई
था, अब
मैंने
तो
जी,
सब कुछ जो है वो बदल चुका है
मसनूई हो गया जी।
बिल्कुल। दूसरी ये है कि जो इस तरह के जानवर पले होते हैं उनमें उनके दूध में और जो जाहिर सी बात है जो दही उसमें बनता है उसमें प्रोटीन्स की तादाद ज़्यादा होती है।
अच्छा
इसके अलावा उन जानवरों से हासिल किए गए दूध के ना सिर्फ दही बनाना बल्कि उसका पनीर बनाना भी इंतहाई आसान होता है, बल्कि ये ज़्यादा अरसे फ्रेश भी रहता है दूध समेत, मतलब कि आप उनके दूध से जो भी चीज़ बनाते हैं
जी
वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो फ्रेश मौजूद रहती है।
ठीक
कंपनीज के दूध की तरफ जब हम आते हैं तो उसमें जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड ये मौजूद नहीं होता।
ठीक
नंबर दूसरी चीज़ ये है कि इनके दूध के अंदर जो प्रोटीन्स है उसकी तादाद भी जो है वो कम होती है,
अच्छा
और इनके दूध में जैसा कि आपको कंपनीज के दूध में मालूम है कि वो खुद भी जो है वो स्किम्ड योगर्ट आएगी जिसके
अच्छा
अंदर 0% फैट होती है, बाद में 2% फैट, 4% फैट, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट जो है वो फैट परसेंटेज डालती
सही
है, मतलब कि उसके अंदर जो वो कुदरती
चर्बी
उसका
है,
एक कुदरती तनासुब है
ठीक
वो उसको डिस्टर्ब करते हैं,
ठीक
जिससे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि हमारे आजकल जो एक इंतहाई बढ़ती हुई बीमारी और ये पूरा एक एपिडेमिक है पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है, उसकी एक जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही है कि हमने डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है वो फैट्स का इस्तेमाल कम करना
कम
शुरू
करते
कर
हैं
दिया है,
बिल्कुल।
और पूरी दुनिया की ख्वातीन के अंदर 27% जो है वो कमी आई है, उनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है सिर्फ
सही
इस वजह से,
अच्छा
और भी वजूहत हैं लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह
अहम
है
वजह है इसकी
बिल्कुल।
वजह। ओके ठीक
और इन चूंकि वो उसमें वो प्रोसेसिंग भी इतनी होती है कि वो फैट्स जो है वो या तो अगर मौजूद भी हो तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, आपको वो गजाइत नहीं दे सकता जो
सही
कि
है
अमूमी तौर पर आपको मिलती है, और अगर वैसे भी जो है वो उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा एक और फ़र्क जो इसमें और कॉरपोरेशंस के पैदा करदा दही में होता है वो ये है कि जो जानवर कुदरती गज़ा पर पले होते हैं उनके दूध से बने हुए दही के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं
अच्छा
जो कि अमूमी तौर पर जानवरों के गोश्त में भी नहीं पाए जाते, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मछली और सी फूड में ये चीज़ पाए
जी
जाते हैं,
जी
ये दूध में नहीं होते लेकिन दही के अंदर आ जाते हैं, ये एक
अच्छा
बड़ी हैरानकुन चीज़ है। लेकिन जो आपकी कॉरपोरेशन का दूध है वो उसके अंदर जो है
ये चीज़ें
वो
नहीं होंगी।
ये
ओमेगा
चीज़ें नहीं होंगी।
ठीक
इसके अलावा मैंने आपको दूध के प्रोग्राम में बताया था कि ये एक चीज़ हमारे जहनों में डाल दी गई है कि ये बैक्टीरियाज हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं इसलिए हमें इसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है या होमोजनाइज
और
करना
आपने बताया
पड़ता
था
है।
वो बैक्टीरिया हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं एक
जी
तरह से।
बिल्कुल,
बिल्कुल
जो इस दूध में भी जाहिर सी बात है ये पहले पैस्चराइज होता है उसके बाद इसके अंदर दही बनता है,
ठीक
लिहाजा
है
वो बैक्टीरिया तो गए काम से।
सही
जो असल जानवर हैं कुदरती गजाब के ऊपर पले हुए घास के ऊपर पले हुए उनके जो उनका जो दूध हासिल होता है और उनमें जो दही बनता है
जी
उनके अंदर बैक्टीरिया की तादाद लाखों में होती है,
सही
बाज़
है
केसेस में इवन के करोड़ों में होती है।
अच्छा
ये मैं आपको बताऊंगा इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो है वो इस्तेमाल होती है प्रोबायोटिक, उसकी
सही
तरफ मैं इंशाल्लाह अभी तफसील में आता हूँ। तो इस उसके अंदर ये लोग अमूमी तौर पर 1 ग्राम के हिसाब से आपको बताते हैं कि 1 ग्राम में जो है वो इतने बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होते हैं। अमूमी तौर पर आम जो आपको दूध मिलता है या पेस्टराइज भी हो तो उसमें 1 ग्राम के अंदर 1,000 बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन 1,000 बैक्टीरिया कुछ भी नहीं है इस मामले में,
अच्छा
क्योंकि यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आपके अपने जो इंटेस्टिन है लार्ज इंटेस्टिन
जी
उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं
बड़ी आंत जो होगी
जी
हमारे
बड़ी
लिए
आंत,
जी
और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो बेसिकली फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो
अच्छा
आपके निज़ाम में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं,
अच्छा
और बाज़ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी वेस्ट कंसिडर कर लेती है और उनको वो प्रोसेस करने की सलाहियत नहीं रखती,
सही
आपके बैक्टीरिया जो आपके गट में मौजूद होते हैं लार्ज इंटेस्टिन में वो उसको प्रोसेस करते हैं, उससे थोड़ी बहुत फूड वो बेचारे खुद भी
खा
हासिल
लेते
करते हैं,
हैं।
छोटे मोटे से होते हैं, तो
ठीक,
उन्होंने क्या कितनी हासिल करनी है। बाकी जितनी भी चीज़ होती है वो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो उस चीज़ को आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है और उसको जो है वो गजाइत का हिस्सा भी बना सकती है।
जी
गट के में, लार्ज इंटेस्टिन में आपके बैक्टीरिया की तादाद कितनी होती है, एक इंसान में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो उनकी आबादी उतनी है जितनी हमारी पूरी दुनिया की आबादी है, यानी कि
सही।
तकरीबन 6.5 से 7 अरब, ये एक
ओह
इंसान के जो है वो उसमें पाए जाते हैं। लिहाजा जब
लेकिन
आप दही ले रहे हैं जिसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 1,000 बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो वो कुछ भी नहीं है, ये कॉरपोरेशन से जो है वो हासिल करता दही में बैक्टीरियाज की तादाद है। जो
अच्छा
आप कुदरती गजा पर पले जानवरों से हासिल करते हैं उसके अंदर तकरीबन 1 लाख से 20 से 30 लाख तक जो वो बैक्टीरिया पर ग्राम
हाँ
तक मौजूद होते हैं।
चल,
ये चीज़ें अब इनकी जो है वो तफसील में आप जितना और मज़ीद जानना चाहें वो
उतनी
उतनी।
गहरी
जी
है।
बिल्कुल।
जी
इसके अलावा एक और इसके अंदर बेनिफिट है कि ये बहुत सारे फैट्स की, जहाँ तक अकसाम की तादाद आती है, बेतहाशा अकसाम है और वो अजीब गरीब किस्म के नाम है, मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। वो
सही,
LCA, एक सॉरी CLA जो है वो मैंने एक नाम लिया है, वही काफ़ी है। जो कुदरती गिज़ा के ऊपर पले हुए जानवर हैं वो उनसे हासिल करदा जो दही होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक और सलाहियत ये होती है कि बहुत सारे ऐसे फैट्स जिनकी डाइजेशन आपकी बॉडी में हो तो जाती है लेकिन आपकी बॉडी उस डाइजेशन को करने में या उसको हज़म करने में या उसको एब्जॉर्ब करने में जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर सकती, वो बैक्टीरिया उस मामले में आपकी हेल्प करते हैं
जी। तो
और
यहाँ
वो उसको उन फैट्स को कन्वर्ट करवा कर उसको भी आपकी जो है वो बॉडी का हिस्सा
तो यहाँ तो
बनवाते हैं।
हमें ये भी पता चल गया कि हमारे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया बेचारे कितनी हमारी मदद
जी बिल्कुल।
करते हैं। जी हमें यहाँ डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मान खालिक साहब। हमारा आज का मौजूद दही की अहमियत और उसके फ़वाद। कोई भी आपके सवाल हो, हम ऑनलाइन मौजूद हैं आपकी खिदमत में। चलते हैं साथ मिल के देखते हैं खूबसूरत सा वक्फ़ा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मैं आ गई हूँ इस तरफ, टच की तरफ। आज कुछ मैं आपके लिए छोटी सी टिप्स लेके आई हूँ जिनका अगर हम अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखें तो शायद बहुत सी बीमारियों से बच सके और एक हेल्दी, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। जी हाँ, सबसे पहला है हमारे पास सीरा। आप जो भी गोलियां या दवाइयां ले रहे हैं, याद रहे उनको आप ठंडे पानी के साथ मत लीजिए। सबसे पहला टिप तो हमारे पास ये था। फिर ये मेरे को तस्वीर बड़ी भी पसंद आई, बहुत प्यारी तस्वीर थी ये। जी, जंक फूड्स, फास्ट फूड या चर्बी या बहुत ऑयली खाने आप 5 बजे के, यानी शाम के 5 बजे के बाद मत लीजिए। हल्के फुल्के खाने लीजिए। 5 बजे से पहले आपको हम इतनी इजाज़त दे सकते हैं कि आप या ऑयली खाने या बहुत भारी खाने ले सकते हैं। इससे ये है कि आपका जो निज़ाम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी बेहतर रहेगा और आपको बाद में रात को सोने में एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स या रिफ्लेक्स वगैरह नहीं होंगे। फिर ये है कि आपको पानी की तो अहमियत मैं बता चुकी हूँ। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, जितना पी सकते हैं उतना पिए, लेकिन सुबह की तरफ ज़्यादा पिए और रात की तरफ कम पिए। ये एक और नुकता था हमारे पास। सोने के मामले में ये कहा गया है कि बेहतरीन टाइम सोने का जो हमारे पास है वो रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक का है, बेहतरीन टाइम है सोने का। और आपकी पूरी नींद भी इस तरह पूरी हो सकेगी, आप दूसरे दिन बहुत फ्रेश और अच्छे यानी तरोताज़ा उठेंगे। फिर हमारे पास एक और था कि बहुत से लोग ये हैं कि जी हाँ, वो तस्वीर अगर आ जाए, जी हाँ, मोबाइल फ़ोन, सॉरी सॉरी, ये तस्वीर फिर से वो हो गई। मोबाइल फ़ोन का जो हमारे पास ये है, कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन को अपने तकिए के पास रख के सोते हैं या अपने सर के ऊपर चार्ज करते हैं या अलार्म लगाते हैं। कहते हैं ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन हमारे आगे चल के ब्रेन कैंसर के लिए बहुत ही नज़दीक ऐसा है कि अहम किरदार अदा करते हैं कि आपको ब्रेन कैंसर या मगजी बीमारियाँ जो भी होती हैं, स्ट्रोक्स वगैरह, वो हो जाएँ। और फिर एक और बड़ी मज़े की बात ये थी कि आप जो हम लोग फ़ोन को जब जवाब देते हैं, आप फ़ोन हो या मोबाइल फ़ोन हो, आप फोन को उल्टे कान से बात किया करें, अपने सीधे कान पे मत लगाया करें। अब मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या थी लेकिन इस बात पर बहुत ताकीद की गई थी। और एक बात और, अगर आपकी फ़ोन की बैटरी आखिरी लाइन पे है या आखिरी बार पे है तो अपने फ़ोन का जवाब मत दीजिए, अपना फ़ोन यूज़ मत कीजिए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त की जो उसके रेडिएशंस हैं वो 1000 बराबर और बढ़ जाते हैं और वो रेडिएशंस हमारी सेहत के लिए कितने मुज़र हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। जी नाज़रीन, चलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा, फिर हम आपके लिए कुछ मज़ेदार सी और भी खबरें लेके आई हूँ खाने पीने के मुतालिक। जी नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वक्फे के दौरान डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि भाई मुझे भी आपकी बातों में कुछ बातें बतानी हैं, जो मेरा पहला मौजू था। जी
आपने पहले फ़ास्ट फूड्स के मुतल्लिक जो है वो थोड़ी सी चीज़ बताई,
जी
खानों के मुतल्लिक एक असूल जो है वो अपना बना लें और असूल जो है वो अपने सामने रखें। वो ये है कि आपके जो सुबह का नाश्ता है
जी
वो तादाद में काफ़ी होना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर जो है वो कहा जाता है कि भाई हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए।
नहीं डॉक्टर साहब, हम अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की तरफ जाएं, हैवी नाश्ता मतलब हलवा पूरी कचौरी फुल डीप ऑयल फ्राइड, वो भी
नहीं
नहीं होना चाहिए
नहीं
मेरे ख्याल
ये
से।
नहीं है, हैवी से मुराद अगर आप फिर अपनी पसंद ले लें तो वो तो नहीं है, वो तो
बिल्कुल
हैवी होता है। मतलब कि आपका सेहतमंद नाश्ता होना चाहिए, लेकिन मिकदार में सबसे ज़्यादा वो होना चाहिए,
अच्छा, यानी सबसे ज़्यादा
दर
मिकदार खाने की उसमें आनी चाहिए।
नाश्ते में होनी
ओके
चाहिए क्योंकि वो आपके दिन का आगाज़ होता है।
अच्छा ठीक
नंबर दो, आपके जो दिन का खाना है वो दरमियानी मिकदार में होना चाहिए
ठीक
और आपके रात का खाना सबसे कम होना चाहिए।
हल्का फुल्का सा कुछ सलाद ले
बिल्कुल
लिया या इस तरह।
नहीं, सलाद नहीं, सलाद रात को नहीं खानी चाहिए,
अच्छा
सलाद रात को नहीं खानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि सलाद में उमूमी तौर पर बाज़ लोग जो है वो प्याज भी डालते हैं, और
हाँ
प्याज ना भी डाला जाए तो वो उमूमी तौर पर चूँकि ज़्यादातर सब्जियाँ होती हैं
जी
और उसके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं,
अच्छा
उससे ये होता है कि जब आप खाते हैं उसको तो बहुत सारे उसमें सेल्यूलोज जो एक्सटर्नल कवरिंग है बहुत सारी वेजिटेबल्स की, पत्ते हो गए मिसाल के तौर
जी
पर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं डायट्री फाइबर्स की बहुत सारी इकसाम है,
जी
वो हमारा निज़ामे निज़ाम उनको हज़म नहीं कर पाता
अच्छा
और उसको फिर बैक्टीरिया हज़म करना शुरू करता है।
ठीक।
लेकिन उस वो बैक्टीरिया हज़म करने के दौरान बहुत सारी गैस पैदा करता है
अच्छा
जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो आपको गैस की प्रॉब्लम होती है बल्कि अगले दिन जो है वो हो सकता है आपको कब्ज़ हो जाए। लिहाजा
हाँ
रात को जो है वो सलाद बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।
अच्छा
और
चलिए
इसके अलावा जो दूसरी आपने बात की उल्टे कान से सुनने
जी
का, असल में ये है कि उसकी वजह जो है वो ये है
हाँ
कि आपका जो अमूमी तौर पर लोग जो है वो राइट
सीधे कान
कान
से
पर जो है वो सुनते हैं,
जी
इवन के लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं
सही
पंजाबी में हम खब्बे कहते हैं उनको,
सही
वो भी जो है वो अपने राइट हैंड से सुनते हैं या बाज़ जो है वो लेफ्ट से सुनते हैं।
जी
उसमें ये होता है कि अगर आप बाज़ जगह किसी किसी दफ़ा जो है वो शोर वाली जगह पर मौजूद हो या आपको चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप उस कान से सुने जो कि आपका डोमिनेंट कान नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप वैसे सीधे कान में सुनते हो तो आप उल्टे कान में सुने आपको आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुनाई देगी।
सही
तो
चले
ये दो जो है वो जो आती। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपने पानी की चीज़ बताई वो बहुत अच्छी चीज़ है,
जी
इसमें एक चीज़ अपनी आदत बना लें कि सुबह सवेरे उठते साथ ही आपका पहला काम जो है
वो
वो
पानी
पानी की
पीना।
तरफ लपकना होना चाहिए
हाँ ठीक
और कम से कम 1.5 से 2 गिलास पिएं, और ऐसा करने से जो है वो आपको कब्ज़ जैसी बीमारी कभी भी नहीं
नहीं
होगी।
होगी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आपने बहुत अहम नुकात बताए। अब मैं चलती हूँ नाजरीन के पास। जी नाजरीन, ये खूबसूरत सी तस्वीर, जी हाँ, गाजर के बारे में। मैं खाने पीने के बारे में तो थोड़ी सी बताऊंगी, लेकिन कुछ खास बातें थी जो मैंने सुना। बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत से खानों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सलाद में, खाने में, बहुत सी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ बातें जो ऐसी हमें नहीं पता थी। जी हाँ, ये तस्वीर देख के तो आप जान गए होंगे, हम अक्सर सोचते हैं कि खरगोश गाजर खाते हैं। जी नहीं, ये ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। जंगली खरगोश जो जंगलों में होते हैं वो गाजर बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन क्योंकि हमने तसव्वुर सा बना लिया इन कार्टून कैरेक्टर्स को देख के, तो बेचारे जो खरगोश हमारे घर में आते हैं हम ज़बरदस्ती उनको देते, तो उनको खाने की आदत हो जाती है। वैसे जंगली खरगोश बिल्कुल भी गाजर नहीं खाते। फिर हमारे पास ये है कि अगर आप 3 गाजर खाते हैं, जी 3 गाजर आपको इतनी एनर्जी देते हैं कि आप 3 माइल तक चल सकें, तो आप सोचिएगा 10 गाजर खाते हैं आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। फिर हमारे पास ये है कि हमने हमेशा ये देखा है कि गाजर जो होता है वो ऑरेंज रंग का या नारंगी रंग का ही होता है, लेकिन अगर आप ये तस्वीर देखें, जी इस तस्वीर में कितने रंग के गाजर हैं। हमारे पास है पर्पल रंग का गाजर है, हमारे पास पीले रंग का गाजर है, और लाल और सफ़ेद गाजर भी मौजूद हैं। और फिर जो आज तक दुनिया में जो रिकॉर्ड कायम हुआ है, सबसे लंबा या सबसे जो बड़ा गाजर था वो 5.4 मीटर्स या 16 फीट का गाजर था, जो काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा होगा, और ये रिकॉर्ड इसका गाजर का रह चुका है। फिर हमारे पास जो एक और तस्वीर है, जी आ गई, एक गाजर के एक 9 गाजरों के अंदर 1 ग्लास जितना कैल्शियम होता है। और फिर पहले जो पुराने ज़माने में था, गाजरों को सिर्फ दवाई के तौर पर उगाया जाता था, सिर्फ दवाइयों के लिए, लेकिन फिर बाद बाद कम यानी आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उनमें आ गया, खानों में आ गया, हमारे सलाद वगैरह में इस्तेमाल आ गया इसका। और फिर गाजर के अंदर 87% पानी होता है, और सबसे पहले गाजर को ग्रीक्स और रोमन ने यानी उसको उगाया और दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये वहाँ की पैदावार بار ہے. جی ناظرین, اب ڈاکٹر صاحب سے ہمیں خدافظی کرنی ہے. یہاں مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے خدافظی کا ٹائم ہو گیا ہے, اور پھر آپ سے بہت مفید گفتگو رہی آپ سے ڈاکٹر صاحب.
پہلے
اگر آپ ایک چھوٹا سا خلاصہ بھی کر دیجیے تو ہمارے کو بہت خوشی ہوگی.
جی بالکل, اس سے پہلے میں گاجر کی دو چار باتیں آپ کو بتا دوں.
ضرور,
18ویں صدی سے پہلے دنیا میں جتنے بھی گاجر پائے جاتے تھے وہ سب کے سب جامنی رنگ کے تھے. اس کے بعد سے جو ہے وہ رنگوں میں ویریشن آئی, میوٹیشن آئی. دوسری چیز یہ کہ گاجر جو ہے وہ وٹامن اے کی ایک بہت اچھی سورس ہے, اور یہ آپ کی جینز ریپیئرنگ میں جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. آپ کو گاجر کے بہت زیادہ فوائد چاہیے تو اس کے اندر آپ کو آپ ایسا کریں کہ گاجر جو ہے وہ کچا کھانے کے بجائے وہ جتنے چھوٹے پیس کر کے آپ کھائیں گے آپ کو اتنے زیادہ غذائی جو ہے وہ فوائد ملیں گے.
اچھا,
کیونکہ اس کے چھوٹے پیسز کرنے کے اوپر اس میں کیمیکلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں.
اچھا,
جو کہ عمومی طور پر ان ایکٹیو رہتے ہیں ایون کے چبانے سے بھی.
لیکن
چھری سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹنے سے وہ گاجر کے وہ تمام حصے جو ہے وہ زیادہ نیوٹریشنل ہو جاتے ہیں.
اس کے علاوہ
بالکل اس کے اندر چونکہ وٹامن اے موجود ہے, بیٹا کیروٹینز کی فارم میں وہ موجود ہوتا ہے.
جی,
لیکن یہ عمومی طور پر آپ کی باڈی اس کو ایبزارب نہیں کر پاتی, اور چونکہ ایبزارب نہیں کر پاتی اس لیے اس کو یوز نہیں کر پاتی.
جی,
تو ایک تو میں نے آپ کو چیز بتائی چھوٹے پیسز میں توڑنے کی, اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گاجروں کو پکانے کے لیے استعمال کریں. عمومی طور پر لوگ پکانے میں نہیں ڈالتے.
بالکل,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہیٹ ہوتی ہے اور جو آئل ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ مکس ہو کر صحیح طور پر آپ کے جسم میں جو ہے وہ نظام میں جذب ہوتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ تشریف لائے. ان شاء اللہ دہی کا موضوع جو ہمارا نامکمل رہ گیا ہے,
انشاءاللہ
اگلے ہفتے ہم اس کو ضرور کوشش کریں گے پورا کرنے کی.
ضرور.
جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عثمان خالق صاحب, اور ہم نے دہی کے بارے میں بات کی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کی گفتگو کے لیے. اور ناظرین ساتھ مل کے دیکھتے ہیں خوبصورت سا ویڈیو کلپ, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہین آریان صاحب کی آواز میں آپ نے خوبصورت ترانہ سنا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. جی ناظرین, ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہند دہلی اسٹوڈیو سے رابطہ ہو چکا ہے. ڈاکٹر عطیہ نشاط ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
کیسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟
الحمدللہ, آپ بتائیے.
اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارا آج کا میں بہت جلدی سے پوچھوں, موضوع یہ ہے کہ جو ہم ڈیری پروڈکٹس ہیں صبح ناشتے میں استعمال کرتے ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے اور فوائد کیا ہے؟
دیکھیے, جس سے بھی ڈاکٹر عثمان خالق بھی فرما رہے تھے کہ صبح کا ناشتہ سب سے زیادہ بھاری ہونا چاہیے. بھاری ایسا نہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ کچوڑیاں اور پوڑی پراٹھے وغیرہ کھاتے ہیں. بھاری سے مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اس میں پروٹین کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ مقدار میں صبح کے ناشتے میں ہونے چاہیے. اب جہاں تک ڈیری پروڈکٹس کا سوال ہے, یعنی دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کا سوال ہے, وہ بہت ہی بہترین سورس ہوتے ہیں اچھی کوالٹی پروٹین کی. پروٹین دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک گڈ کوالٹی پروٹین اور ایک بیڈ کوالٹی پروٹین. جو ہمارے پلانٹ سورسز سے ملتے ہیں جیسے کہ دال ہو گیا, جیسے چیلا وغیرہ بہت سے لوگ کھاتے ہیں, اچھی بات ہے, اس سے پروٹین ضرور ملتا ہے, لیکن اس میں امائنو ایسڈ جو پروٹین کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں وہ سارے موجود نہیں ہوتے اسینشیل. لیکن جتنے اینیمل سورسز ہوتے ہیں جیسے کہ دودھ دہی وغیرہ, اس میں پروٹین بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے, جس سے ہمیں وہ سارے امائنو ایسڈ مہیا ہو جاتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہمارے جسم کے لیے. تو دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں بہت ہی زیادہ اہم کردار نبھا رہی ہیں صبح کے ناشتے میں.
جی, تو ڈاکٹر صاحب, ان کی فوائد, یعنی اب دودھ ہو گیا, مکھن ہو گیا, تو ناشتے میں تو یہی دہی کا تو خیر استعمال کم ہی رہتا ہے, فوائد ایک انسان کے پورے دن میں جو چلنے والا دن ہے اس میں کیا رہتے ہیں, کتنی انرجی دیتا ہے انسان کو؟
دیکھیے رباب بہن, ایک گلاس ملک کا دودھ کا وہ دو تین طریقے کا ہو سکتا ہے. جیسے ایک, جیسے ڈاکٹر عثمان خالق صاحب فرما رہے تھے کہ جو کارپوریٹ ملک ہوتا ہے, کارپوریٹ کمپنیاں جو دودھ دیتی ہیں وہ اکثر پیسچرائزڈ بھی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سکمڈ ہوتی ہیں, یعنی اس کا فیٹ نکال لیا جاتا ہے. تو وہ جو دودھ ہوتا ہے ہمیں اس میں کیلوریز نہیں ملتی, یعنی اس میں اتنی انرجی ہمیں اتنی نہیں ملے گی جتنی ہمیں ہول ملک سے ملتی ہے, یعنی جو ہم نے بفلو یا या गाय का दूध लिया, उससे जितनी मिलती है उस दूध से नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल उसमें भी उतने ही कैल्शियम होगा, उतने ही विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे जितने आपको बफलो मिल्क से मिलते हैं। तो ये तो हो गई ये बात। और दूसरी बात ये कि जैसे कि दूध बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है। तो जो कि दिन की शुरुआत अगर हम इस किस्म की गजल से करते हैं तो जाहिर बात है कि सारा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है उससे। और दूसरी बात खास ये है कि जो दूध और जैसे मक्खन वगैरह हो गया, ये इसमें एक जैसे डॉक्टर खालिक साहब भी फरमा रहे थे कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा थ्री, जो कि हमें खासकर बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनके जहनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अक्सर हमने देखा है कि सुबह के नाश्ते में मक्खन का बहुत इस्तेमाल होता है। ये हालांकि ट्रेडिशनल चीज है, हमें पहले बहुत नहीं मालूम रही होगी इसकी क्या अहमियत है, लेकिन अब हम आज जान पाए हैं कि असल में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस्म को ना सिर्फ ये जरूरी मकदार में एनर्जी देते हैं बल्कि हमें उतना वक्फा भी मुहैया कराते हैं कि हम सारा दिन उसको आराम से हजम कर सकें और उसका भरपूर फायदा उठा सकें।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन और मुफीद गुफ्तगू रही आपके साथ। इंशाल्लाह आगे के प्रोग्रामों में भी आपसे राबता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जी नाज़रीन, हमारा वक्त जिस तरह ख़त्म हो रहा है, मैं जाने से पहले बताते चलूँ हमारा हफ्ते का दिन का मौजू होगा बच्चों के लिए टीवी और इंटरनेट का इस्तेमाल। डॉक्टर सुलैल फातिमा साहिबा हमारे साथ होंगी और पूरा हफ्ते चलने वाला जो मौजू हमारा वो होगा पशेमानी। आया पशेमानी सही है या नहीं, आखिर पशेमानी होती ही क्यों है हमें। जी नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हमारे जो तमाम कदम आज की दुनिया हर दिन उठें और उसके हलाल की तरफ उठें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।